मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार चल रहा है, उसका अंतिम थोड़ा अंश रह गया है। पेज नंबर 190 पर सबसे नीचे का पैरा है कि तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं, तथा वहां बागबाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कसार का पोषण करते हैं, तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकार से विषय कसायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव स्वरूप है उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है, इस प्रकार कुधर्म का सेवन हुआ। इस कुधर्म के सेवन में बहुत सी बातें बताई हुई, अंतिम पॉइंट था कि जैन मंदिर है, जैन मंदिर बनाया है किसी ने तो आत्मा की आराधना के लिए बनाया है। अब धीरे जैन मंदिर कर तो बनाएंगे तो बड़ा 2-4 एकड़ की जमीन बढ़िया कर लेंगे, तो उसमें बीच में छोटा सा जैन मंदिर बना देंगे और चारों तरफ एकदम बाग बगीचे तालाब इतनी इतनी बढ़िया बनाएंगे। जैसे मैं कोई जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन निगाह दौड़ा करके देखना, सारे देश में आप लोग जाते हैं तो है ना, तो वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, फिर वहां वहां बैठ के कुकथाएं करना, यहां वहां की भलाई बुराई करना और सोना इत्यादि प्रमाद रूप में बाग बगीचे लगाकर आनंद लेना, ये सब मां विषय कसाय की भोग की सामग्रियां इकट्ठी करते हैं, और लोभी पुरुष को गुरु मानकर दान देते हैं, असत्य महंत बना बनाकर स्तुतियां करते हैं। अब ऐसा ऐसी प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि कोई भी जरा प्रभावशाली बनता है साधु तो फटाफट उसे एक टेकड़ी चाहिए, इसको तीर्थ बनाना है, और टेकड़ियों को तीर्थ नए तीर्थ बनाने की होड़ लगी हुई है। पुराने तीर्थों की दुर्दशा जो हो रही है वो तो हो रही है ना, और हरेक को उसमें 25 जगह अपना नाम जुड़ जाएगा, आई कर जाएगा। अब एक कितन्यान वृक्षों को काटो, जमीनों को खोदो, एक साधारण आवश्यकता के लिए 2-4 कमरे बनाना की आवश्यकता हो तो ज्यादा भी बनाना, मान लो जैसे कोई छात्रावास वगैरह बनाए तो अच्छी चीज है, लेकिन वो बस वैसे ही बस तीर्थ के नाम पर और कोई भी चीज बस बना देना उसके। अब धर्म साधना कितनी होती है, अब जरा विचार करके देखो, जितना आरंभ परिग्रह हुआ है, जितनी हिंसा हुई है और जितना जितनी और वहां पर ये सब चीजें हुई हैं, उसकी अपेक्षा वहां धर्म की आराधना कितनी हो रही, कहीं भी निगाह डाल करके एक देख लो। तो ये सारे पंडित जी को कुधर्म की प्रवृत्ति में ले रहे, वो कहते ऐसा नहीं है कि एक क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार होता है, वो कहते हैं तुम्हें ठीक है वो काम अच्छा नहीं था, लेकिन इसे मिथ्यात्व कैसे हो गया, हर बात में आप मिथ्यात्व से जुड़ रहे हो तो इसमें मिथ्यात्व कैसे हो गया। तो तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक को छोड़ना। सारे तत्व श्रद्धान में देखो आश्रव है, तो आश्रव बंध को हे क्यों कहा, क्योंकि वो रागादि भाव रूप है इसलिए हे कहा। संबंध निद्रा और मोक्ष को उपादेय क्यों कहा, क्योंकि वो वीतराग भाव रूप है इसलिए उपादेय कहा। तो एक ही बात होगी ना, रागादिक को छोड़ना ये मूल प्रयोजन रहा धर्म की आराधना में। अब इसी भाव का नाम धर्म है, यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने तो वहां तत्व सिद्धांत कैसे रहा, देखो कैसे घटित किया उन्होंने, वहां तत्व सिद्धांत कैसे रहा। अब कहीं भी कोई भी टेकड़ी को तीर्थ बना दिया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि वो नहीं था तो क्या जैन धर्म की हानि हो रही थी, और वो हो गया तो क्या जैन धर्म की बढ़ोतरी हो गई? एक जैनी बढ़ गया, एक जैनी के बच्चे के मुंह में नवोकार मंत्र पहुंच गया, क्या क्या हुआ? मतलब उससे किस चीज की बढ़ोतरी हो गई? जिसको अपन तरक्की मान के बैठ जाए मान लो, तो उसमें से किस चीज की बढ़ोतरी हो गई? जैसे मान लीजिए कि अभी ये खोल रहे हैं, पठन पाठन के काम हो रहे हैं, तो ठीक है, अभी जिनवाणी बच्चों के कंठ में जा रही है, शास्त्र हैं तो गांव गांव में पहुंच रहे हैं, स्वाध्याय हो रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, मतलब ये तो अपन समझे, इसमें थोड़ा सा वो भी हो गए जो जो भी आरंभ परिग्रह, तो वो समझ में आता है, लेकिन इससे क्या तीर क्या क्या तरक्की हो रही है? अब वो कहेगा समाज का पैसा लग गया, पैसा लगने की बात मैं नहीं कहता हूं, तो लग गया, कहीं भी लग गया, नहीं लगता पैसा कसाय में लगता, उसका कोई महत्व तो नहीं है कहां लग गया और कहां नहीं लगता। ये बात जुदी है कि इसी पैसे को यदि ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाया जाता तो इसका कितना अधिक लाभ समाज को, मतलब समझ लो कि इसमें हजार विद्वान तैयार हो सकते थे। अभी ये मत समझना कि समाज में ऐसे विद्यार्थियों की कमी है, यदि ऐसे विद्यालय हजार विद्यार्थियों के लायक भी खुल जाएं तो हजार विद्यार्थी भी मिलेंगे, हर साल हजार निकले जैन धर्म के विद्वान बन बन के, तो अभी मिलेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि क्यों नहीं बने, बने सब जगह से बने, आप जिस बात को सत्य समझते उसी का प्रचार करो, कोई बात नहीं, वो ही पढ़ाओ, नवो कामन तो सब पढ़ाएंगे ना, तुम्हें संगठनों के नाम तो वो ही पढ़ेंगे ना, तत्वासूत तो वो ही पढ़ेंगे, श्राप का चार वो ही पढ़ेंगे, तो 99% तो दोनों में एक ही जैसी बातें ही उसके पास जाएंगी। अब मान लो कि तुम 1% कोई आदमी अपना जोर लगाकर अपनी बातें उसमें लगा दे, तो वो जब 5 साल बाद विद्वान बन जाएगा, इतनी सामर्थ्य उसमें भी पैदा हो जाएगी कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगा, कि मूल आचार्यों की बात क्या है और इस विद्वान की जोड़ी हुई बात क्या है। क्यों? उससे कोई हानि होने वाली नहीं है, मतलब यह है सावध लेसो कम पाप और अधिक लाभ। अब इसमें तो पाप ही पाप दिख रहा है, लाभ नाम की तो कोई चीज कहीं नजर ही नहीं आती है। मैं कहता हूं एक नई कॉलोनी बसी, 50 घर जैनियों के बस गए, तो वहां जैन मंदिर बनाना बहुत आवश्यकता है। अब ये है साबद्ध लेसो बहु धर्म राशि, सैकड़ों लोगों को वहां रोजाना देव दर्शन की सुविधा हो जाएगी, भगवान की पूजा भक्ति करने की स्वाध्याय हो जाएगी, स्वाध्याय की सुविधा हो जाएगी, वहां बच्चे नवोकारमन से बैठ के पढ़ सकेंगे, इसकी सुविधा हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम है, करना चाहिए, कौन मना करता उसके लिए, है ना। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जो आवश्यक चीजें हैं उनमें कौन निषेध करता है? हमारे पुराने तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, जहां से भगवान सिद्ध शिला को गए हैं। अब जहां कुछ ही नहीं है, जिन कोई इतिहास नहीं, जहां कोई मतलब कोई प्रयोजन नहीं, आवश्यक नहीं, और टेकनी पर कोई बगल में भी रहता होगा तो रोजिना दर्शन करने जाने वाला भी नहीं है, उसके लिए नीचे दर्शन मंदिर अलग बनाना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर चढ़ना पड़े पहाड़ी को, तो कौन जाएगा दर्शन करने, बोलो, उसकी तो व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। वो तो समाज के लिए लायबिलिटीज ही है, और उसमें कितना आरंभ परिग्रह हुआ है, अरे ये सब बातें आप जानते ही हैं, इसलिए पंडित जी सब उसको कुधर्म की श्रेणी में रहते हैं, और उसके मिथ्यात्व भाव का, क्योंकि रागादि भाव का पोषण हुआ और उसे अपन ने धर्म निरूपित किया। जिनने दान दिया है तो उनको कितना चंग पे चढ़ाया गया है कि तुम्हारा कितना तुम्हें धर्म लाभ होगा, इससे जो होगा वे होगा, लोग वैसे ही थोड़ी दे देते हैं, कितनी कितनी प्रेरणाएं दे देकर किस न किस तरह से उनको मतलब वो बताया जाता है, और फिर झूठी झूठी कहानी किससे अतिशय मतशय के, क्योंकि जिसे पैसा आने लग जाए, जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठे किया जाते हैं, तो इसलिए वो मिथ्यात्व का सेवन हो गया जो आपने वहां चीजें प्रचलित करी है। देखो यदि रागादि भावों को बढ़ाकर धर्म माने तो वहां तत्व सिद्धांत कैसे रहा, तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म माना सो ये झूठा सिद्धांत हुआ, इसलिए कुधर्म के सेवन से मिथ्यात्व भाव है। रागादि भाव पुण्य है, क्या लगा, रागादि भाव पाप है, लगा ना मूल मूल उसमें है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होकर होती जानकर इनका निरूपण किया। इनका निरूपण जो हमने किया है ये मिथ्यात्व भाव के पोषक हैं, पोषक हैं इसलिए गीत मिथ्यात्व हैं, क्योंकि पोषे चिर दर्शन मोह ये गीत मिथ्यात्व की परिभाषा है। उसको पोषण प्रदान किया ना उसने मिथ्यात्व को, इसलिए ये गीत मिथ्यात्व है। यही सठ पावड़ में कहा है, देखो यदि लज्जा से भय से या बड़ाई से भी कुत्सित देव को कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को बंधता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहें, देखो अब ये अंतिम उनका आदेश कहो उपदेश कहो प्रेरणा कहो वो पंडित जी कह रहे हैं। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहें वह पहले कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्यागी हो, तब बाद में बात आगे बढ़ेगी। हो सकते हो कहते इससे क्या फर्क पड़ता है साहब, हम तुम्हारे तत्व सिद्धांत सही कर लें, अपने आत्मा को जान लें और आत्मा का अनुभव कर लें, और हम किसको गुरु मानते हैं किसको देव मानते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं फर्क पड़ता है। देखो ना सम्यक्त के 25 मलों के त्याग में अमूढ़ दृष्टि में बसठ अनायतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका त्याग अवश्य करना तथा कुबेरादिक के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सुबह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। वो कह समझे क्या पाप है, ना हिंसा बोले ना झूठ बोले ना चोरी हुई ना कुछ ना हुई, इसमें क्या पाप हो गया बोला। इसके फल से निगोद नरकादि पर्यायें पाई जाती हैं। वो कल बोला ते होंती लल्लू मूंगा कल बोला था ना वही है, वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है, इसका इतना स्पष्ट हानि है, इसलिए निषेध कर रहे। पंडित जी कहते हैं यदि ऐसे खतरा नहीं होता तो हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं, क्योंकि इसका प्रतिपादन भी तो आजकल खतरे से खाली नहीं है ना। लेकिन इसका प्रतिपादन नहीं करना में अनंत काल का खतरा है और प्रतिपादन करने में एक भव का खतरा है। अब आज तो वैसा जमाना नहीं है, टोडरमल जी जैसा जमाना क्या, तो जीवन जीवन का खतरा तो नहीं है, तो भी थोड़ी उपद्रव का खतरा है बस खत्म, समझ लें ना। तो इतने खतरे के लिए अनंत काल का खतरा मोल लेना, इतना छोटा सा खतरा मोल लेना। देखो सो हे भव्यो, सबसे नीचे की दो पंक्तियां, सो हे भव्यो किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादिक का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जिन धर्म में तो यह आम नाय है, जो क्या आम नाय है जैन धर्म की, बोलते हैं ना 13 पंथ आम नाय, 20 पंथ आम नाय, कुंद कुंद आम नाय, तो क्या आम नाय है कि सबसे बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, पहले बड़ा पाप छोड़ो फिर छोटा पाप छोड़ो। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त विसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है, ये समझ लो ना। सात वसन का सेवन, सात वसन जानते हैं मांस खाना मतलब ये सब चीजें आ गई, इनसे भी बड़ा पाप है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। ये परिस्थितियां टोडरमल जी के जमाने में भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, और कुंद कुंद के जमाने में भी होंगी। क्यों रहेंगी? इसका बहुत जबरदस्त कारण तो ये है कि 6 महीना और 8 समय में तो 6 जीव मोक्ष को जाना है ना, जीव तो संसार में अनंत है ना। अरे मनुष्य गति की अपेक्षा ही विचार करो, यदि हम तो मनुष्य गति में भी नहीं मालूम 29 अंक प्रमाण है मनुष्य जो असंख होते हैं, क्योंकि 19 अंक में संख 10 संख हो जाते हैं और 10 संख संख के बाद भी तो असंख। इतने मनुष्यों में 6 महीना और 8 समय में मान लो 600 जीव यही हो गए तुम्हारे कोटे में यही, तो कितने से होंगे? तो भी हमेशा अल्प मत में तो रहने वाले हैं। क्यों? ये धर्म का झंडा लेने वाले 608 ही तो होंगे नहीं, इधर लाखों लोग लिए हुए बैठे हैं, लाखों लोग गुरु बने हुए बैठे हैं, बनने के चक्कर में है, तो ज्यादा तो बहुमति उन्हीं की हो गई ना। क्यों गलत लगाओ आप? तो उनमें जो सदमार्ग के सच्चे रूपक होंगे, जो भी होंगे, वो तो अत्यंत अल्प मत में रहेंगे ना। लेकिन निंदा प्रशंसा के भय से और लोभ से आशा से, तो क्या भय क्यों है? वहां यहां आने में प्रशंसा निंदा क्यों होगी? क्योंकि बस बहुमत निंदक होता है, अल्पमत बेचारे की निंदा होती है। सच्ची झूठी की बात कहां है ना? तो जो वो अल्प वाला होगा ना, 100 जहां जा रहे हैं और एक आदमी नहीं जा रहा, तो उसी की निंदा होने वाली है। एक जगह जा रहा है वो बहुत अच्छी जगह हो, 100 जा रहे हैं वो बुरी जगह हो, लेकिन निंदा किसकी होगी? वो एक आदमी की निंदा करने से 99 तो निंदित होते नहीं, तो भीड़ की भीड़ जा रही। इसलिए मतलब लिखा ना, कोई भी निंदा प्रशंसा के भय से और लोभ से, यदि प्रशंसा का लोभ और निंदा का भय, अभी मारने पीटने की तो बात रही नहीं ना, इतनी कहीं इतनी तो होगी ना निंदा प्रशंसा, इतना तो होगी इस जमाने में, इससे तो नहीं बच सकेंगे आप। आपको कह देंगे आप मुनि विरोधी हैं, गुरु विरोधी है। ये तो ये मुनियों को नहीं मानते ये कहेंगे, भैया हम रोजाना वो कारमंत बोलते हैं, मुनियों को नहीं मानते। हम डंके की चोट करेंगे, हम मुनि महाराज को मानते हैं मानते हैं मानते हैं मानते हैं, तो सुनने नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि जी हमें नहीं मानते, ये हमें नहीं मानते तो कोई उस पर ध्यान देगा नहीं, और यदि ये कह देंगे मुनियों को नहीं मानते तो सब लोग इनके विरोधी हो जाएंगे। और हरेक ये कहो तुम हमें मान लो, बाकी मुनियों को मानो चाहे नहीं मानो, बस एक को तो मान लो तो हम तो मुनि मान लेंगे। और एक में वे भले कहते एक है, लेकिन वो एक और कोई नहीं है, वो एक मैं हूं। समझने मैं माने वो हरेक आदमी जो कहता है वो उसका आशय है कि एक उसे मान लो और बाकी किसी को तुम मानो चाहे नहीं मानो, तो उसे तो अपने स्वयं को पजवाने से मतलब है, सारी दुनिया से तो कोई मतलब है। तो निंदा तो होगी, ख्याल में आई ना? तो निंदा के भय से और प्रशंसा के लोभ से ये डर करके ये काम नहीं करना। कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा नहीं आने वाला है कि जब इस अच्छे महान कार्य की माने कौन सच्चे देवसास गुरु की ही आराधना करेंगे, गुरु कुदेव की नहीं करेंगे, इस बात में तुम्हें प्रशंसा मिले और निंदा नहीं हो, ऐसे अवसर बहुत कम आएंगे। तुम्हें जाति बाहर नहीं करें, तुम्हारी पिटाई नहीं करें तो गनी मत समझना, ये समझना बहुत बढ़िया काल है ये, समझना ऐसे ऐसे समझना। देखो पंडित जी तो यहां तक तो लिखते हैं, देखो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। न्यायात पदा धीरा पदम न प्रचलंती, धीर वीर जो हैं वो न्याय के रास्ते से एक कदम भी यहां वहां नहीं हटते हैं, चाहे लोग उनकी निंदा करो अथवा स्तवंतु अथवा कोई प्रशंसा करो, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आवे अथवा गच्छतु चली जावे, यथेष्टम जहां जाना हो जहां चली जाए। अद्यैव मरणम वस्तु आदि मरण हो जाए और एकांतर तक बहुत काल लंबे काल तक जीना पड़े, कैसी भी परिस्थितियां बन जाए, लेकिन सज्जन लोग तो नीति में निपुण लोग तो न्याय पथ से एक कदम भी यहां वहां हटते नहीं है, ये पंडित जी याद दिलाते हैं। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रसंदादिक के भय से और लोभाधिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व की प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। देखो ये लाइन क्या बताती है, जो लोग कहते हैं क्यों ये झगड़े की बात है, इसकी चर्चा ही तुम क्यों करते हो, इसकी बात ही बिल्कुल बंद कर दो। तो वो कहते हैं ना कि देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं और इनके आधार से तो धर्म है, तो इनकी को छोड़ देना अब तो धर्म को छोड़ देना है। इसकी चर्चा नहीं करें तो उनका सत्य स्वरूप नहीं समझें तो धर्म ही नहीं रहेगा ना। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुगदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिक का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। थोड़ा मल जी के जमाने में भी बहुत पाई जाती थी और आज तो उससे ज्यादा बड़ी है, कोई घटी तो है नहीं। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया, इसलिए निरूपण किया उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो, ये हमारा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। ये टोलरमल जी कहते हैं हमने जो थोड़ा देव गुरु शास्त्र की बात करी वो इसलिए की। देखो सम्यक दर्शन की परिभाषा में चार चीजें मुख्य हैं, अपन सर्वोदय तीर्थ वाली किताब है ना उसमें वो बात लिखी है, चार चीजें उसमें जो सर्वोदय तीर्थ वाला अंश है उसमें डाली है कि चार चीजें कौन कौन, सच्चे देवसाज गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं आचार्य समन्द भद्र, तत्वार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं उमा स्वामी, आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं ये समय सार अथवा आत्मख्याति प्रसाद सिद्धि उपाय है ना, और भेद विज्ञान से वो एक और क्या, हाँ सुपर भेद विज्ञान। तो इस तरह से चार चीजें ली, तो उन चार चीजों में देवसास गुरु वाली बात सबसे मुख्य है, पहले नंबर पे ली, क्योंकि गीत मिथ्या से संबंध रखती है वो। इसलिए यदि इसके बारे में सही निर्णय नहीं हुआ तो एक घड़ा यदि ओंधा रखा गया तो उसके ऊपर सारे घड़े ओंधे ही ओंधे रखे जाने वाले हैं। मान लो हमने गुरु का निर्णय गलत कर लिया और जो आदमी सही तत्व ज्ञान को नहीं जानता है उसे हमने गुरु स्वीकार कर लिया, चाहे श्रद्धा से किया चाहे भय से किया चाहे लोभ से किया चाहे कैसे ही किया सोनलाल जी, तो अब जब हमने अब वो जो गुरु बताएगा वो ही तो करेंगे क्यों, तो गलत गुरु को चुन लिया तो वो जो गलत ही बात बताने वाला है तो सारी बातें गलती गलती होने वाली हैं, फिर वो आत्मा भी गलत तो तत्वार्थ सिद्धांत भी तत्वार्थ भी गलत तो सब चीजें गलती गलती होने वाली है ना। इसलिए ये सबसे पहला है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों है सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, कि देव तो जैसे अपन अनंत भगवान को कहते हैं आदिनाथ से महावीर से सबको मोक्ष चलेगा, कोई यहां है नहीं, जिन्हें हम कुदेव कहते हैं बेबी यहां कहां है, कहां दिखाई देते हैं, टोटा मुझे ये लगा था बहुत तो काल्पनिक ही है, उनकी तो मूर्तियां बना बना के हमने बैठा दी हैं, चाहे वो देव हो चाहे कुदेव हो, वो वास्तव में ऐसे हाड़ मास के पिंड रूप सामने कहीं दिखाई नहीं देते हैं जो सीधा तुम पर आक्रमण करें, और शास्त्र भी आकर तुम्हारे गले में बनते नहीं है जबरदस्ती। ये कान दो प्रकार के होते हैं ना, एक एक्टिव एक अनएक्टिव होते कि नहीं होते, कि एक तो निमित्त दो प्रकार के होते हैं ना, प्रेरक तो किताब तो प्रेरक में उदासीन निमित्त तुम पढ़ो तो तुम्हें सहयोग कर देगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं करेगी, वो डंडा लेके तुम्हें पढ़ाएगी नहीं, प्रकाश उजेला तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सहयोग कर देगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं करेगा, डंडा लेके नहीं पढ़ाएगा, लेकिन गुरु जी डंडा लेके पढ़ाते हैं। तो देव शास्त्र गुरु में देव और शास्त्र, शास्त्र तो किताब जैसे हैं, गुरु जी देव भी प्रकाश जैसे हैं, वे गुरु जी डंडा बाल लिए जैसे हैं, डंडा मार के पढ़ाते हैं, वो एक्टिव है, एक्टिव कारण है, मेरे कहने का मतलब यह है हैं, और उसमें जब भूल हो गई तो तुम्हें डंडा मार मार के उस रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु का चुनाव है। जैसे मैं कहता हूं ना कि महाभारत की हार जीत का निर्णय उसी दिन हो गया था। किस दिन? लड़ाई में जो 18 दिन बाद हुआ ना कि पांडव जीते और कौरव हारे, ये तो बाद की बात है। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों जने पहुंचे अपना युद्ध में सहयोग देने के लिए मांगने के, और दुर्योधन ने सारी सेना मांग ली और अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुन लिया, उस दिन ही फैसला हो गया था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वो चुनाव में फैसला हो जाता है उस दिन। ऐसे ही सबसे पहले हम गुरु खोजने निकले और गुरु के खोज में सही खोज हो गई हमारी, तो समझ लीजिए हमने युद्ध जीत लिया, हमारा मुक्ति मार्ग खुल गया। और गलत हो गई तो समझ लेना मामला के भाई उस दिन ही फैसला हो गया, रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा। ये जो वकील होते हैं ना वकील, तो जैसे किसी ने अपन पे दावा किया तो उसका जवाब दावा, तो वो असली लड़ाई तो दावा और जवाब दावे पे ही होती है। इतना आप जानते होंगे शायद कि जो हमने दावा किया उसने जवाब दावा दे दिया, फिर उस पर गवाह सफाए होंगे सबसे छोटी अदालत में, फिर वो केस बन जाए, जो भी फैसला हो जाए, फिर जब आप हाई कोर्ट में अपील करने जाएंगे तो ना तो वहां पर दावा होगा, ना जवाब दावा होगा, ना कोई गवाह होगा, ना सफाई होगा। वहां तो सिर्फ कानूनी लड़ाई है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। कानून की गलत व्याख्या हो गई हो तो उसे सुधारा जाएगा। जो गवाहों ने कह दिया और जो उसने लिख दिया कि ऐसा हुआ, बात तो वही प्रमाणिक मानी जाएगी। इसलिए असली जीत और हार तो जवाब दावा और दावा लिखने में होती है। जिसने होशियार वकील कर लिया और उसने दावा में सही लैंग्वेज लिख दी कि जवाब दावा में सही लैंग्वेज लिखी गई, क्योंकि सारा बेस, सारी लड़ाई का बेस वो ही बनने वाला है। हल में आएगा नहीं है? तो ऐसे ये बेस बनने वाला है देव सास गुरु के चुनाव में है? तो इसमें चुनाव यदि गलत हो गया तो समझ लीजिए कि हम अनंत काल तक के लिए संसार में भटक गए, और सही चुनाव हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया। इसलिए इसमें रंच मात्र भी गफलत करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि लोक में जैसे हमको एक आदमी नौकर रखना है, हमें एक अपना क्लर्क रखना है, एक चपरासी रखना, ऑफिस खोला बस एक ही क्लर्क रखना, एक ही चपरासी, और हम ऑफिसर हैं। अब हमने कहा कि हमको एक क्लर्क चाहिए, तो बहुत से पास से आएंगे, इसे रख लो, इसे रख लो, इसे रख लो। अब हमने यदि किसी की सिफारिश से रख लिया और वो कमजोर आदमी रखा गया क्लर्क, तो सारी तनख्वाह तो क्लर्क की उसे देनी पड़ेगी और क्लर्क की हमें करनी पड़ेगी, और जो भी जो काम में नुकसान होगा उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना। बोलो, डायरेक्ट हम प्रभावित होने वाले हैं। और चपरासी ऐसा रख लिया जो कोई करे ही नहीं कुछ, तो रोज ना झाड़ू भी हमें को लगानी पड़ेगी और तनख्वाह चपरासी की देनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए देखो, यहां तो राष्ट्रपति की भी सिफारिश नहीं चलेगी, यहां तो हम अपने ही मन का आदमी रखेंगे, और जब निकालना होगा निकाल देंगे और रखना होगा रखेंगे। कोई कहेगा नहीं नहीं इसे मत निकालो, ये हमारा आदमी है, नहीं चलेगा। हमारा रिश्तेदार, तुम्हारा बाप हो तो नहीं चलेगा, सिफारिश नहीं चलेगी। क्यों? कि ये तो सीधे हम प्रभावित होने वाले हैं, सीधा हमारा काम बिगड़ने वाला है। ये कोई गवर्नमेंट की नौकरी तुम्हें दिला दी, अब वो जाके जो होगा तो भोगेगा, जो भोगे सो हमें सिफारिश लगा दी, लग गया ठिकाने से। क्यों? रोने वाला रोएगा। यहां तो सीधा हमको उसका इफेक्ट होने वाला है, ये तो हमसे प्रभावित होने वाले हैं। इधर तुम विद्यार्थियों को भर्ती करते हैं और 10 हमने फेलुअर यहां भर्ती कर लिए, तो ये सारे 5 साल तक हमको ही परेशान करने वाले हैं, हर साल हमारा रिजल्ट बिगाड़ने वाले हैं, सारे देश में बदनामी करने वाले हैं, और किसी तरह 5 साल काट भी लिए। अच्छे हो गए तो ऐसे में करेंगे, बुरे में तो वैसे रोशन करेंगे। आप समझ में आए कि नहीं आई? तो इसमें हम सोहनलाल जी की सिफारिश मान के क्या करें बोलो, क्योंकि इसका दंड आपको तो भोगना नहीं पड़ेगा, हम मर जाएंगे तब भी हमें भोगना पड़ेगा, तब भी हमारे नाम को रोशन करेंगे कि नहीं करेंगे वो। और अच्छे प्रतिभाशाली आए, सदाचारी आए, तो कम से कम मेहनत और बढ़िया से बढ़िया माल तैयार होगा क्यों, और अनेक पीढ़ियों तक हमारे अनुकूलता प्रदान करेंगे। सवाल अभी एक दिन का नहीं है साहब, अभी अपन भर्ती नहीं करेंगे तो ये कहां जाएगा, इसका क्या होगा। मैं दादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, एक दिन की दया बहुत महंगी पड़ेगी, तुम्हें तो बहुत दया आ रही हो तो 2-500 रुपया दे दो और इसे भेज दो कहीं दूसरी जगह भर्ती करा दो, क्या दूसरी जगह करा दो, भले ही खर्चा तुम देते रहना, इसे गले में मत बांधो, इसमें दया भया का काम नहीं है, निर्दयता से काम करो। अब ये देखिए, जब शिष्य के चुनाव में इतनी सावधानी की जरूरत है तो गुरु के चुनाव में कितनी सावधानी की जरूरत है वाला? एक नौकर के चुनाव में, एक चपरासी के चुनाव में, एक क्लर्क के चुनाव में इतनी सावधानी की जरूरत है तो गुरु के चुनाव में कितनी सावधानी की जरूरत होनी चाहिए, सोचो अपन मन से सोचो। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, मैं तो रोजाना जाता हूं, 2 घंटा सब्जी मंडी में जाता हूं, सब्जी अपने मन की लाता हूं, मुझे किसी दूसरे की लाइफ पसंद ही नहीं है, एक एक पीस चुन चुन के लाते हैं, टमाटर का काय का लाते, मुझे पता नहीं क्यों, एक एक दाना नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम वो मत चढ़ाओ, तो मैंने रखा जो रखा, बस वही रखा वही रखा, वो रद्दी धारा दाना उसमें डालने की कोशिश करता है ना, तो हम नहीं डालने देते हैं, क्यों रमेश जी करते कि नहीं करते, वहां कितना सावधान है, क्यों वो जानता है एक सड़ा हुआ दाना चढ़ गया तो मुझको ही भोगना पड़ेगा, मुझको ही खाना पड़ेगा, क्यों सोचता कि नहीं सोचता है, तो कितना सावधान रखता है। और हमें क्या है, छात्रावास में जानी है, छात्र लोग खाएंगे अपन को, तो ले दो ढक दो साली चली जाएगी, सड़ी गली होगी तो खाएंगे क्यों, तो खुद को खाना हो तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, दोनों में ताजी इतनी बात करो फर्क तो पड़ता ही हो, और फिर अस्पताल के लिए खरीद के भेजनी हो तो भगवान ही मालिक है, और जेल खाने के लिए भेजनी हो तो, तुझे स्वयं खाना हो तो सब्जी का एक एक पीस सिलेक्ट करता है, बाप का बहन का भाई का चुना हुआ पसंद नहीं आता है, और गुरु के चुनाव में चाहे से चुनाव कर ले, आज तो एक कपड़ा मां बाप का लाया हुआ कपड़ा बच्चों को पसंद नहीं, बच्चों का लाया हुआ कपड़ा मां बाप को पसंद नहीं, चलो कपड़ा तो माथे पर लगाना पड़ता, शरीर पर पहनना पड़ता है, टोपी पसंद नहीं आए तो नहीं आए किसी दूसरे की, लेकिन पैर में पहनना पड़ता है चप्पल और जूता भी दूसरों के पसंद किए हुए पसंद नहीं आते, खुद भले सिलेक्शन तो मैं खुद करूंगा, तुम तो दुकान बता दो, लेकिन मैं तो देखूंगा तो मैं खुद बता तो करो। ये भोग की एक एक सामग्री में क्यों, जिसका कुछ मतलब नहीं है, 5 मिनट में निकाल के फेंक देने वाले हैं, लेकिन उसका हम उसका कलर हमको एक कलर मेरे को पसंद नहीं है, एक कलर मेरे को पसंद है, कपड़े का कलर पसंद करेंगे, डिजाइन पसंद करेंगे, एक एक चीज पसंद करते क्या नहीं करते हैं, मकान का वास्तु में यहां को मोह नहीं होना, यहां को मोह होना क्यों, दक्षिण में नहीं होना उत्तर में होना, कितनी कैसी 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 बातें, सिलेक्शन हो गया है। अब एक गुरु का ही सिलेक्शन ऐसा है कि तुमको क्या देखो, बस पिछली कमंडल देखो और सिलेक्ट कर लो, तुम्हें क्या करना है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस कदम पिछली कमंडल वाले तुमको लाखों पर ना, ज्ञान दर्शन वाले की तो बात ही खत्म हो गई, आत्मा के अनुभव वाले की तो बात ही खत्म हो गई, सच बोलता हूं मैं, ये बात एक तरह गंभीरता से विचार करने की है, ये अनंत भव का सवाल है, लड़का लड़की को पति पत्नी को चुनते हैं ना तो कहते सारे जीवन का सवाल है, सारे जीवन का सवाल है, लेकिन गुरु के चुनाव में तो अनंत भवों का सवाल है, समझ लेना है? और इसे चुनाव में हमें किसी को कुछ अधिकारी नहीं देना चाहते हैं, हम भी नहीं सुनना चाहते हैं, उसमें क्या देखना, उसमें क्या देखना, उसमें क्या देखना, बस खत्म। ये पंडित जी यहां पर बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं, इस तरह उन्होंने लिखा ना, देखो अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया। हमने जो इनका निषेध रूप निरूपण किया, टोडामल जी कहते हैं इतना खतरा समझ के, अनंत भव का खतरा है इसलिए हमने इतनी बात की है, उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। अब ये अपना सातवां अध्याय शुरू होता है। इस सातवां अध्याय ये भी दिगंबर जैनों की बात तो चल ही रही है, लेकिन दिगंबर जैनों में भी जो स्वाध्यायी हैं, पंडित हैं, और वो भी बारीक गलतियां कैसे करते हैं, स्थूल गलतियों की बात, ये तो स्थूल गलती में है, ये देवसाज गुरु के स्वरूप की बात तो स्थूल गलती में है, बहुत मोटी गलती है। अब कहते सूक्ष्म गलतियों की बात करते हैं। देखो इस भव तरु का मूल के जानहु मिथ्या भाव, ये संसार रूपी समुद्र का एकमात्र यदि कोई जड़ है तो ये मिथ्यात्मान भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, इसलिए इनको निर्मूल कर दो, जड़ से उखाड़ दो और मुक्ति का उपाय करो, है ना। अब जो जीव जैन हैं, देखो, और जिनाज्ञा को मानते हैं, अब किन की बात चल रही है, एक तो जैनी है, कट्टर जैनी है, ऐसे जैनी हैं कि ये माथा धड़ पे रहे चाहे ना रहे लेकिन गलत जगह नहीं झुकेगा, ऐसे जैनियों की बात है। क्या कहते हैं सुमनला जी, क्योंकि इसका निषेध तो गलत जगह नहीं झुकने का निषेध तो इस छठवें अध्याय में कर दिया, समझे ना, सुगुरु कुगुरु का विवेक, सुदेव कुदेव का विवेक तो कर दिया ना, माने ऐसा विवेक का धनी हो गया तो भी कैसी गलती रहती है उनकी बात है। क्या देवजीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं माने शास्त्र में निकाल के बता दो कि देखो भैया ये बात लिखा है, घास आप सिर उठा रही है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता शास्त्र में, ऐसा नहीं, शास्त्र में लिखा है कि एक कुदेव का सेवन नहीं करना चाहिए तो हाँ साफ स्वीकार है, शास्त्र में लिखा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए तो स्वीकार है, श्रद्धा में तो स्वीकार करे, जीवन में धारण करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार भूमिका के अनुसार जितना बने उतना करे, कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बना सरदा धरे, ख्याल में है ना। तो ये जिनाज्ञा को मानते हैं माने ये सवाल नहीं है कि जैन धर्म में बात की वह सच्ची है कि झूठी है, यदि इन्हें पता चल जाए कि जैन धर्म की बात है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की बात है, तो फिर बिना किसी मीन मेख किए स्वीकार कर लेंगे, इसका नाम है जिनाज्ञा को मानते हैं, है ना, ऐसे जैनियों की बात है। क्यों जी, जो जिनाज्ञा को मानते होंगे वे जानते होंगे क्या नहीं कि जाने बिना मानना कैसे संभव है, बोलो, कि हम जानते तो है नहीं जिनाज्ञा को मानते हैं तो जाने बिना मानना कैसे संभव है, इसका मतलब जिनाज्ञा को जानते हैं और जिनाज्ञा को मानते हैं, ख्याल में है ना। जो जीव जैनी है, जिनाज्ञा को जानते हैं और जिनाज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, देखो उनके भी मिथ्यात्व रहता है। अब उसका वर्णन करते हैं, अब उनका वर्णन करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध तो कोई बात करने ही नहीं चाहते हैं, उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर यदि रह गया तो उसका वो ही फल निकलेगा निगोद, चाहे वो ज्यादा रहे और चाहे थोड़ा रहे, उससे नहीं है। एक जहर का है ना, एक बाल्टी में एक तोला जहर डाला हो तो नहीं ले दूध पीना वो है, और एक बाल्टी दूध में और एक बिल्कुल पाव रखती एक कैरेट जहर डाला हो तो पीना क्या नहीं पीना, क्यों? तो कहते मिथ्या तो बैरी काम तो अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। माने अब वे सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात करेंगे, इससे एक सिद्ध होता है सूक्ष्म बात करेंगे। अभी इसका मतलब अभी तक की बातें क्या थी, वो अभी तक की बातें तो स्थूल थी, और अब बात देवसास गुरु की बात तो स्थूल है, वो तो डॉक्टर पहचानने की बात है, अब दवा की बात चल रही है। कभी हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराना चाहते हैं कि नहीं? मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बाजार में अपन जाते हैं ना, तो हार्ट का ऑपरेशन करने वाले इस बंबई दिल्ली में 10,000 रुपए में भी हार्ट का ऑपरेशन होता है, और लाख में भी होता है, और 5 लाख में भी होता है, और बिल्कुल एक लेन से अस्पताल है, और एक ही अस्पताल के पड़े हुए डॉक्टर लोग हैं और लेन से बैठे हैं, और सबके सफल होते हैं, और उनके ऑपरेशन किए हुए लोग जिंदा बाजार में खूब घूम रहे हैं। फिर भी यदि हमारी जेब गर्म हो तो हम सबसे महंगा सबसे बढ़िया उस डॉक्टर के पास ही ऑपरेशन कराना पसंद करते हैं क्या, नहीं बोलो? और ज्यादा जेब गर्म हो और खुनगुनी हो तो हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया, चाहे वो यहां यहां वहां यहां से भी बुरा हो। आदमी कोशिश तो करता है ना पूरी ताकत लगा करके बढ़िया से बढ़िया। मैं तो कहता हूं डॉक्टर की बात तो जाने दो, दर्जी की बात ने? हम कुर्ता सिलाना हो तो बढ़िया से बढ़िया दर्जी कौन है? कैसा भी 5 रुपए में सीता, वो 50 रुपए लेता है, तो 50 रुपया वाले के यहां लाइन लगी रहती है, और 5 रुपए वाले के कोई नहीं जाता है। मैंने लोक में हम जरा जरा सी बात के प्रति कितने सावधान है, ये बाल बनाने ना, ये 10-12 रुपए में भी बनते हैं, और 50-50 रुपए में भी लोग बनवा के आते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ता है? कुछ दिखते हैं कुछ 50 रुपए के हैं, लेकिन नहीं वहां जाएंगे कहीं भरी बाजार वगैरह में कहां कहां जाते हैं मुझे पता नहीं, बाल बनाने वाले यहां भी बैठे। मैंने हम एक एक बात के प्रति कितने सतर्क हो गए हैं जरा विचार करना, और 4 गुना 5 गुना खर्च करने को तैयार हैं। वो चाय पीते हैं ना, वो 2 रुपए का कप भी आता है, 1 रुपए का कप भी आता है, 15 रुपए का कभी 20 रुपए का भी, वही कप चाय वैसी होती है क्यों? लेकिन वो उस होटल में जाके 5 स्टार के 20 रुपए की चाय पीते हैं, क्यों? कि हमको अच्छी से अच्छी चीज चाहिए। लोक में हम कहीं भी भोग में कंप्रोमाइज नहीं करते। ये गाने वाले बुलाते हैं ना, ये गाने वाले तो वही भजन गाएंगे, और वही गाने वाले 5,000 में आते हैं, 50,000 में आते हैं, 5 लाख लेते हैं, क्यों? तो 5 लाख देके क्यों बुलाते हैं? गाने भजन तो वही है, लेकिन नहीं हमको तो टॉप का जो भी चाहिए, हमको टॉप चाहिए, हमको कोई सेकंड हैंड चीज नहीं चाहिए, है ना? तो यहां ये कहते हैं कि देखो भाई धर्म के संदर्भ में भी ऐसी बात हमको होने चाहिए ना, कि अंश भी जिसमें खराबी नहीं हो, बिल्कुल फिट हो, जो 100% सही हो वो बात। तो पंडित जी कहते हैं वो सूक्ष्म बारीक गलतियां कहां रह जाती हैं, उन सब की हम बात करते हैं। देखो वही रिपीट होगा, फिर देवसास गुरु आएंगे, समझे? देवसास गुरु आएंगे, फिर वही 7 तत्व आएंगे। अभी जो 4th अध्याय में निकले, 5वें 6वें में निकले, फिर 7वें में वही आएंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि वहां स्थूल गलतियां थी और धीरे धीरे यहां सूक्ष्म गलती पकड़ी जाएगी। वहां मोटी मोटी गलतियां थी और यहां बारीक गलती जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं, उस गलती को देखो। अब आगे क्या लिखते हैं, वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। लिखा कितना, सारे जनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। अब निश्चय व्यवहार नहीं जानो तो हम जनागम का मर्म समझ ही नहीं सकते। अब आज हमारे बड़े बड़े विद्वान मोक्षुओं में भी ऐसे कहने वाले मिल गए हैं कि नयों की जरूरत ही नहीं है, नयों के चक्कर में मत उलझो, है ना? ऐसे लोग कहने वाले में बोलो, अभी जो टोडे मुझे लिखा कि नहीं लिखा, कि सारा वचन जो है वो जैनियों में सारा वचन जो है वो निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। और नए चक्र में तो लिखा है जिनवाणी में एक वाक्य ऐसा नहीं है जो नयों के बिना कहा गया हो। और जो नयों को नहीं जानते हैं वो संसार समुद्र से पार किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे इस नए चक्र में जय धवल के उद्धरण मैंने दिए, आप लोग तो पढ़ते हैं उसमें दिए ना उद्धरण के बात। लेकिन अब वो मान लो अपना थोड़ा कमजोर होगा ये विषय तो बस वो अपने हे हो गया। देखो नथिणेन विहूणम सुत्तम अत्व बिजिनवर मदम्मी जो नए वादे न्यूणा मुनि नो सिद्धंतिया होती। जिनेन्द्र के मत में नए वाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए जो मुनि नए वाद में निपुण हैं वे ही सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता हैं। जो जे नए दिठ विहीना तान न बत्थु सहावे उवे लद्धी बत्थु सहावे विहूणा सम्मा दिठी कहम होती। जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, और वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। और भी बहुत है, और ये मालूम कब लिखे गए थे जो आज चर्चा चलने वाले हैं जिनकी चर्चा भी नहीं थी तब। ये तो गुरुदेव जिंदा थे तब ये लिखा जा चुका था, और गुरुदेव की उपस्थिति में मैंने स्वयं इसे पढ़ाया था सोनगढ़ में। और जब मैंने उस क्लास में पढ़ाया था उस क्लास में गुरुदेव श्रोता बन के बैठे थे। ये अपने अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी सभा के श्रोता गुरुदेव थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात उनके सामने छप के आ गई थी उनके आत्मधर्म में, समझे ना, और उनने पढ़ ली थी और उनके सामने बैठ के सबको हमने पढ़ाई थी और उनने बैठ के सील लगाई थी कि हाँ ठीक है। अब उन्हीं गुरु के शिष्य अब आगे कहने लग गए इसकी जरूरत नहीं है। पहले सारा देश कहता था इसकी जरूरत नहीं है, और सोनगढ़ में जाते थे तो वो निश्चय व्यवहार को पढ़ाते थे, और वहां से पढ़ करके जो लोग आते थे तो वे कहते थे कहां से नया नया लाए। तो उस वक्त हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी इन्हीं गुरुदेव के भगत भी ये बात कहेंगे कि इनकी जरूरत नहीं है, है? क्या कह रहे, जमाना है, समय की बात है। इसलिए भाई इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है चुनाव में। यदि एक में लिखा ना देखो कि निश्चय व्यवहार के जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं वही कहते हैं। इनके स्वरूप को नहीं जानते हैं तो वे निश्चयाभासी व्यवहाराभासी होते हैं, यदि इनका स्वरूप सच्चा जाने तो वे निश्चयाभासी व्यवहाराभासी नहीं होंगे। लिखा ना इनके स्वरूप को नहीं जानते हुए जो वो प्रवृत्ति करते हैं तो उस प्रवृत्ति में जो सूक्ष्म भूलें रहती हैं और जो भूलें मिथ्यात्व को पुष्ट करती हैं उनकी चर्चा यहां करते हैं। अब सबसे पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चलेंगे। देखो ये अपने मुमुक्षुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकरण ये निश्चयाभासी का है, और आज का ये करंट टॉपिक चलता है ना वो सुपर प्रकाशक का और निर्विकल्प स्वविकल्प का, और आत्मा की अनुभूति के काल में पर जानने में आता कि नहीं आता है, और केवल ज्ञान होने के बाद पर जानने में आता कि नहीं आता है। इस सारा प्रकरण का जवाब इस प्रकरण में है। तोरेमल जी के जमाने में भी वो बातें चलती होंगी, उस जमाने में भी ऐसे लोग होंगे जो ये बात कहते होंगे, और उन सब का जवाब इस प्रकरण में दिया है। बाकी जब शांति की क्लास में ही चलता है ना तो आप लोग तो इसे पढ़ भी रहे हैं बारीकी से, क्योंकि अपने पास तो समय उतना नहीं है तो उतनी बारीकी में अपन जा भी नहीं पाएंगे। फिर भी गंभीरता से विचार करने की बात तो है ही, इसमें कितना साफ लिखा है। और ये जब लिखा गया था तब कांजी स्वामी भी मान लो पैदा नहीं हुए थे। इन नए चक्र भी मैंने बोला ना कि जब जो आज चर्चा चलती है ना तो मतभेद की, तो ये इस मतभेद के जवाब में नहीं लिखा गया, बल्कि ये मतभेद जब खड़े नहीं हुए थे वो गुरुदेव सुध विद्वान थे तब की लिखी हुई ये चीज है और आत्मधर्म में छपी हुई। उस दिन से तो आज तक किसी ने कही नहीं कि इसमें एक अक्षर गलत है। देखो कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं और भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। पहली भूल क्या? अपने को सिद्ध समान मानते हैं, वही तो संसारी मानते सिद्ध समान। और क्या कौन से किन की गलती है? ये मां से के पेट से सीख के आए हैं वो नहीं, जिनने जिनवाणी पढ़ी है और जिनवाणी पढ़कर मानते हैं। कि लिखा ना सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं तो सदा सिद्ध के समान हूं, ये जिनवाणी में पढ़ा अब इससे माना। तो एक किन की गलतियां हैं? जो जिनवाणी पढ़कर जिनने मिथ्यात्व का पोषण किया है। भरे क्या बात कहते हो, कुछ शास्त्र के पढ़ने से मिथ्यात्व का पोषण होता है? ये जिनवाणी तो सम्यक शास्त्र है। क्यों? ये कहते हैं समय सार को पढ़कर जिनने अपने मिथ्यात्व का पोषण किया है, ये निश्चयाभासी का प्रकरण उन मिथ्या दृष्टियों की गलती बताने वाला है। बोलो कि समय सार तो मिथ्यात्व का नाश करने वाला है भाई साहब। ये मिथ्यात्व की इतनी ज्यादा चर्चा हुई ना, और सम्मा दर्शन के इतने गीत गाए मिथ्यात्व के नाश से मुक्ति के मार्ग में प्रथम सीढ़ी, तो एक बार को ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, और जैसे इन पर इनका एकाधिकार हो गया। सम्मा दर्शन की चर्चा और मिथ्यात्व की चर्चा पर, अर्थात सम्मा दर्शन की प्राप्ति पर, तो उस वर्ग ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि मिथ्यात्व बंध का कारण ही नहीं है। मिथ्यात्व बंध का कारण मोक्ष का कारण नहीं रहेगा। सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, समझेंगे ना? सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना। देखो मिथ्यात्व माने तीनों है ना, पहले तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, तीनों है ना मिथ्यात्व माने, और सम्यक माने तीनों है ना। ये तो अपन कई दफे बता चुके ना। अब मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार बंध का कारण नहीं है, ये अर्थ हुआ उसका? बोलो हुआ कि नहीं हुआ निहाल जी? तो जब ये बंध का कारण नहीं है तो सम्मा ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कैसे होगा? क्योंकि उसके अभाव में ये होता है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। वो संसार का मार्ग नहीं है तो मोक्ष का मार्ग कैसे होगा? बस लेकिन कदम तुमने ये कह दिया और हमें तुम्हारा विरोध करना है, तो हमें तो सबका बात करनी है, बड़ी बात है। ऐसे ये है कि चौथे गुणस्थान में सम्मा जैसे आत्मा ज्ञान भव ही नहीं होता, सम्मा ही नहीं होता। अरे छायक सम्मा होता क्या? होता है। अब दर्शन मोहिनी का नाश हो गया, अनंतानबंदी चली गई, और तब भी वो सच्चा सम्मा दर्शन नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा सच्चा दर्शन? तब भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, और वो आत्मा को नहीं जानेगा और साक्षात नहीं देखा है, और उसके बिना सम्मा दर्शन हो गया? वो तो सातवें गुण स्थान में होता है। क्यों? क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि हम नग्न दिगंबर दशा में ही मुनि दशा होती है, सातवां गुण स्थान होता है। तो ये तो कहते हम तो असंयमी हैं, हम तो असंयम सम्मा दृष्टि है। ये कहते थे कांजी स्वामी, हम तो चौथे गुण स्थान वाले हैं, असंयम सम्मा दृष्टि है। और भी हम तुम भी कोई दावा करेंगे तो यही करेंगे बहुत से बहुत। तो यदि न रहे बांस न बजे बांसुरी, यदि यह सिद्ध हो जाए कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति सिद्धोपयोग सम्मेषण होता ही नहीं है, तो ये मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाए, बस खत्म, झगड़ा खत्म। हमारी एक फूटे तो फूटे, लेकिन तुम्हारी दोनों फूट जाए तो झगड़ा खत्म। क्यों? चौथे पंचम गुण स्थान में देश संयम होता है, अब वहां भी नहीं होती आत्मानुभूति, असंयम में नहीं होती, देश संयम में नहीं होती, समझे? छठ में सकल संयम हो गया, तीन कषाय का अभाव हो गया, और वहां आत्मानुभूति होती नहीं, तो तीन कषाय का अभाव आत्मानुभूति के भी नहीं हो गया। देखो वो आत्मानुभूति तो सातवें गुण स्थान में जाके होगी, तो उसके पहले तीन कषायों का अभाव हो जाएगा कि नहीं? मिथ्यात्व का, अनंतानबंदी का, अप्रत्याख्याना वरण का, अप्रत्याख्याना वरण का, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और नग्न दिगंबर दशा हो जाएगी, अभी आत्मा अंदर में देखा ही नहीं कैसा है, अब बाद में देखेंगे जाकर के उधर। यदि कोई बात ऐसी कहे कि भाई पहले के जमाने में लड़का लड़की को आपस में देखे बिना सगाई हो जाती थी, तो हम मान लें। फिर तो कहे देखे बिना शादी हो जाती थी, तो कैसे नहीं? बोलो फिर मान। शादी में तो सात फेरे पड़ते होंगे, हथलेवा होता था, है ना, तो देखते ही होंगे, नहीं वो घूंघट मूंघट डाले तो देखते नहीं। अरे हमारे यहां तो ऐसा नेग होता था, तुम्हारे यहां होता था कि हमें पता नहीं, कि वो लड़का लड़की होते थे ना तो सारे पंच बैठे रहते थे, वे दोनों पलंग पे आमने सामने बैठा दिया जाता था और उन दोनों के ऊपर एक चद्दरा डाल दिया जाता था, उनको पर्दा कर दिया जाता था। वो क्या था कि फेरे पड़ने के पहले ये शिकायत नहीं रहे कि हमने देखा नहीं है, तुम अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि सबके सामने शर्म के मारे नंगा उठा के देख नहीं सकते, इसलिए उनके पर्दा डाला जाता था। हमारे पास डाला गया था, तुम्हारा डाला गया था, नहीं डाला गया था, पता नहीं। अब आज के लोगों को डालने की जरूरत ही नहीं, पहले ही सब देख लेते थे। हम तो उन लोगों में से है ना कि सगाई होने के पहले, बारात ले जाने के पहले तक हमने देखा ही नहीं था, तो हमारे लिए तो जरूरी था ना। तो कैसे माने कि बिना देखे शादी हो गई, मान नहीं सकते, बिना देखे सगाई हो गई उतनी तो मान लें, लेकिन बिना सेरे शादी हो जाती ये नहीं मान सकते ना। चलो ये भी मान लेते हैं हो जाती होगी, किसी को नहीं दिखाते होंगे, और वो पर्दा भी डाल देने पे कोई नहीं देखता होगा आंख उठा करके, फिर वो कहेगा नहीं नहीं बिना देखे बाल बच्चे भी हो गए तुम्हारे। ये मानने लायक बात है, नहीं है ना मानने लायक बात। तो ऐसे ही चौथा गुरु स्थान, पांचवा और छठवा, छठवा भी वो भी आत्मा को देखे बिना, आत्मा का अनुभव के बिना कैसे गले उतरे बोलो। अब ऐसे कोई माने कि हमारे विरोध है, कहां किसका विरोध, कहां का विरोध है, ये तो जिनवाणी का सहज प्रतिपादन है। इसलिए तो कहते हैं भाई कि गुरु का निर्णय करना भी बहुत जरूरी है।
स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, पूरा पर सवे दोष रहित पाप क्रिया से शून्य शोध, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा
बताए दिन वाणी।